નિયમ સાર કારણ કાર્ય નિયમ લેક્ચર નંબર 150
ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્રાયાણં નમો લોયે સવસાહૂણં નમિયો નજિનં વીરં અનંતવર્ણાનદં સનસહાવં વોચ્છામિ નિયમસારં કેવલી સુદ કેવલી બણિદં.
આચાર્ય શ્રી કુનકુન ભગવાન દ્વારા રચિત યહ નિયમસાર નામક ગ્રંથ હૈ ઉસ પર પદ્મ પ્રભુ મલધારી દેવ ને તાત્પર્ય વૃત્તિ ટીકા લિખી હૈ. ઇન પર ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી કે જો પ્રવચન હુએ હૈ વે કારણ કાર્ય નિયમ રૂપ સે પુસ્તક મે પ્રસિદ્ધ હુએ હૈ. उसके अभी आज हम तीसरी पुस्तक प्रारंभ करते हैं, एक नंबर के पृष्ठ पर वहां से शुरुआत करते हैं. ये श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव प्रणित से नियमसार, उसमें ये चौथा व्यवहार चारित्र अधिकार है. इस अधिकार का नाम ही व्यवहार चारित्र अधिकार है. नीचे अभी गाथा पढ़ेंगे हम, वहां लिखा है अथ इदानिम व्यवहार चारित्राधिकार उच्चते, यानी अब यहाँ से व्यवहार चारित्र की बात बताएंगे, उसका अधिकार शुरू हो जाता है. गाथा कुलजोणी जीव मगण ठाणाई सुजानी ऊण जीवाणम तस्सारंभण यत्तण परिणामो हो ही परम वदम कुलयोनि जीव मार्गणा स्थानादिषु ज्ञात्वा जीवानाम तस्यारंभ निवृत्ति परिणामो भवति प्रथम व्रतम जीवस्थान मार्गणास्थान योनि कुलादि जीवना जानिने आरंभति निवृत्ति रूप परिणामते व्रत प्रथम छे. ये सब जानकर कहा है क्या क्या है? जीवों के कुल के भेद, योनि के भेद, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, सबको जीव समास आदि जानकर. जीव स्थान का अर्थ होता है जीव समास. देखो अभी इसका अर्थ देखते हैं, अन्वयार्थ. दो नंबर के पृष्ठ पर, क्योंकि जो चरणानुयोग व्यवहार चारित्र है, यहाँ चरणानुयोग के नियम बताएंगे, पर उसके पीछे कर्णानुयोग के नियम जो है वो उसका कारण है कि ऐसा क्यों करना. तो यहाँ जीवों की हिंसा से हमें बचना है. जहाँ ये अधिक जीव पाए जाते हैं ऐसे स्थान में ये खान पान जो हमारे जो चलना वगैरह आरंभ में सभी कुछ क्रियाएं जो है इस तरह से होनी चाहिए कि जीवों की हिंसा हमसे नहीं हो. इन्हें अहिंसा का पालन करना है ना, उसकी बात है. देखो अन्वयार्थ जीवानाम यानी जीवोना कुल योनि जीव मार्गणा स्थानादिषु. कुल योनि जीव स्थान मार्गणा स्थान वगैरह ज्ञात्वा इन्हें जानिने, नहीं जानकर नहीं कहा, जानकर. क्यों जानना, ऐसा लगता है ना ये झंझट हमें क्यों, तो उसको जानकर तस्य इटले तेमना आरंभ निवृत्ति परिणाम તેમના આરંભથી નિવૃત્તિ રૂપ પરિણામ તે પ્રથમ વ્રતમ પહેલું વ્રત ભવતી અને છે. ટીકા આ અહિંસા વ્રતના સ્વરૂપનું કથન છે. પહેલા વ્રત ને અહિંસા વ્રત ઉસકી બાત યહાં બતા રહે. કહીં પર ભી હૈ મુનિ હો યા શ્રાવક હો હિંસા કી પરિણતિ સે જો દૂર હટના હૈ શ્રાવક કે લીએ ઉસકે યોગ્ય કહેંગે તો परंतु उसके भी ये जानकर ही उसके भी जो ये जो कोई आचार है उसके पीछे का रहस्य क्या है, तो वहाँ कहाँ कितने जीव रहते हैं। जैसे हम कहते हैं बादर निगोद कहाँ पाए जाते हैं, ज्ञान ही नहीं है, तो हम उसको कैसे टाल सकते, उनकी आरंभ से निवृत्ति कैसे हो सकेगी, ये कहने। देखो आ अहिंसा व्रतना स्वरूप नु कथनचे, कुल भेद योनि भेद, अलग अलग उसके स्थान का अर्थ होता भेद, वेरिएशंस, जीव स्थान ना भेद अने मार्गणा स्थान ना भेद। जीव स्थान यानि जीव समास और मार्गणा स्थान जी 14 मार्गणाएं हैं। पहला ज एटले 42मी गाथानी टीका में ज प्रतिपादित करवामां आव्या छे। अहीं पुनरुक्ति दोषना भय थी, पुनरुक्ति ने रिपीटेशन दोषना भय थी, क्योंकि वो ग्रंथ बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए एक बार बता दिया है तो कहते हैं यहाँ दोबारा नहीं बताएंगे। प्रतिपादित कर्या नथी, पहली बात ये अपनी हुई थी, कुल के भेद योनि के भेद वगैरह हमने देखा था। त्या कहला तेमना भेदों ने जानी ने तेमनी रक्षारूप परिणति तेज अहिंसा छे। देखो यहाँ व्यवहार की बात है, यानी यहाँ तो राग है, तो राग है तो कैसे प्रकार का राग है, तो कहते कि उनकी रक्षारूप परिणति, ऐसे ही शुभ भाव, पाप से तो निवृत्ति हो रही है, तो उनकी अहिंसा का तो परिणाम है ही है, परंतु उनके बचाने का भी परिणाम होगा। तो जहाँ ये जीव रहते हैं न, वहाँ हम इसी तरह से हमारे कार्य करेंगे कि उनकी जीवों की विराधना न हो।
यहाँ जो कुलभेद कहे गए हैं वो हमने कितने देखे थे, कुछ याद है? कुछ लाखों में होते हैं,
करोड़ों में थे ना, इसीलिए मैंने जीव कांड मंगवाया। कुल के भेद किसको कहना और योनि के भेद किसको कहना हमने देखा था। हाँ नहीं, पर वो कहना किसको, स्कंद, हाँ जिनमें उत्पन्न होते हैं, हाँ, उत्पत्ति के स्थान जो है उसको योनि कहा था, और जिन पुद्गल स्कंदों से उत्पन्न होते हैं, देखो शरीर उपजता होता है, उसको कुल कहा था। मैं यहाँ से पढ़ के बताती हूँ, जीवकांड में से पेज नंबर 216 जीवकांड में हिंदी वाला, यानी वो 117 नंबर की गाथा है, तो किसी भी पेज पुस्तक में ढूंढ सकते आप। यहाँ क्या कहते हैं, जाति है वह तो योनि है, वहां उपजने के स्थान रूप पुद्गल स्कंधों के भेदों का ग्रहण करना। जहाँ जीव उपजता है उन पुद्गल स्कंधों के जो भेद है उसको योनि कहा, और कुल जो है वो जिन पुद्गलों से शरीर निपजता है उनके भेद रूप है। शरीर जिन पुद्गलों से तैयार होता है उसके जो भेद है उसको कुल कहा, और जिस स्थान में वो जीव उपजता है उसको योनि कहा। तो कहते कि जीव समासों के कुलों के जोड़ जो बताए थे टोटल, एक कोड़ा कोड़ी और 97,50,000 कोड़ी था, तो उसके हर एक जीव समास के भेद हमने अलग अलग देखे थे। एक कोड़ा कोड़ी 97,50,000 कोड़ी,
कुल
वो योनि। देखो एक कोड़ा कोड़ी और 97,50,000 कोड़ी, पचास हजार के बाद 7 जीरो, 1975, उसके ऊपर 11 जीरो, 1975 के ऊपर 11 जीरो, पचास हजार और फिर करोड़, हाँ हाँ बोलो शोभा। हाँ मैंने अभी जीव कांड पेज 216 से पढ़कर बताया। हाँ ये कुल टोटल कुल सभी 14 जीव समासों के टोटल जीव की कुल कितने होते हैं उसकी बात है। हाँ जिनसे उनके शरीर बने हैं वो हमने देखा ना, पृथ्वी का एकों के 22 लाख करोड़ है, अब का एकों के 7 लाख करोड़ है, तेजस का एकों के 3 लाख करोड़ है, वायु का एकों के 7 लाख करोड़ है। जरूरत नहीं है ना उसकी। 1975 के ऊपर 11 जीरो उसको कहेंगे, एक को कहेंगे कोड़ा कोड़ी, और 97,50,000 कोड़ी। और योनि तो मालूम है ना, 84 लाख योनि। सबके कितने के कितने वो तो हमने देखे थे पहले, अब यहां देखते हैं आगे। टीका की सेकंड लाइन पेज नंबर 2, कुल भेद योनि भेद जीव स्थान ना भेद। जीव स्थान के भेद यानी जो 14 जीव समास है, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, इन सब के अपर्याप्त और पर्याप्त। मूल में तो दो दो भेद करेंगे, या फिर लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और पर्याप्त, ऐसे तीन तीन भी भेद करेंगे। सामान्य से 14 भेद किए जाते हैं। अभी सुबह बात यही चल रही है ना अपनी, हाँ आज ही हुआ था ना। हाँ अभी योग, उनमें हम योग देख रहे हैं। देखो मार्गणा साना भेद पहला ज प्रतिपादित करवामां आव्या छे, અહીં પુનરુક્તિ દોષના ભયથી પ્રતિપાદિત કર્યા નથી, ત્યાં કહેલા તેમના ભેદોને જાણીને તેમની રક્ષારૂપ પરિણતિ તે જ અહિંસા છે। એ અહીંયા સબ વ્યવહાર ચારિત્ર કી પરિભાષા હૈ ના, સચ્ચી અહિંસા તો હમને દેખે જીવ મેં જો આત્મા મેં રાગાદિ કી ઉત્પત્તિ હિ નહીં હોના વહી સચ્ચી અહિંસા હૈ, પણ અહીંયા સબ જો રાગ હોતા હૈ તો કિસ પ્રકાર કા રાગ હૈ, તો જીવો કે રક્ષા કે પરિણામ હૈ। તેમનું મરણ થાવ કે ન થાવ પ્રયત્નરૂપ પરિણામ વિના સાવધ્ય પરિહાર દોષનો ત્યાગ થતો નથી। પ્રયત્નરૂપ પરિણામ દેખો નીચે લિખા હૈ, ફૂટનોટ, મુનિને મુનિત્વોચિત એને મુનિત્વ કે લીએ ઉચિત, મુનિપના કે લીએ ઉચિત, યોગ્ય શુદ્ધ પરિણતિની સાથે વર્તતો, એને મુનિઓ કે જો વિતરાગતા જો હૈ વો ઉનકી શુદ્ધ પરિણતિ હૈ, ઓર સાથે રાગ ભી હૈ કે નહીં હૈ, સંજ્વલન કષાય હૈ તો ઉસકે સાથ રાગ ભી હૈ, તો ઉસ રાગ કા કાર્ય ક્યા હો રહા હૈ, તો ઉસકે સાથ વર્ત તો જે હઠ વગરનો, એ સહજ બતાને કે લીએ હઠ વગરનો કહા, યાની અજ્ઞાની ક્યા કરતા હૈ, હા જીદ સે વો તો કરકે દિખાતા હૈ, મેં યે કરકે દિખાઉંગા ઇસ તરહ સે, और इनके वो सहज परिणति है। पेज नंबर 2, दो नंबर के पृष्ठ पर आए, कौन सा अभी हम टीका नीचे फुटनोट देख रहे हैं के मुनि ने शुद्ध परिणति नी साथे वर्ततो, यानी उनके जो शुद्ध परिणति, देखो जब आत्मा में स्थिरता है तब शुद्ध उपयोग है, और स्थिरता नहीं है तो भी दो तीन कषाय की जो अभावपूर्वक वितरागता है उस वो तो चल ही रही है, तो वो भले शुभोपयोग में है फिर भी शुद्ध परिणति तो चल ही रही है। कभी कभी जब अंतरंग में स्थिरता है तब शुद्धोपयोग कहेंगे, और शुद्धोपयोग नहीं भी होगा तो शुद्ध परिणति तो सदैव चल रही है। शुद्धोपयोग के काल में तो है ही है, पर राग के यानी जो अंतरंग में स्थिरता नहीं है उस काल में भी उनकी शुद्ध परिणति चल रही है, नहीं तो क्या मानना पड़ेगा, अंतरंग में जाते तो वितरागता और बाहर आने पर सभी राग हो जाएगा। उनके राग भी कितना बाकी है, केवल संज्वलन बाकी है, तो नहीं संज्वलन बाकी है ना, वहां पर भी जब संज्वलन का कार्य चल रहा है, तीन कषाय उनका तो अनुदय ही है, वो तो उसका तो हमारे हाँ देखो देखो अभी समय दर्शन चौथे गुण स्थान की बात करो, अभी उसके तो समय दर्शन हो गया तो अभी वो तो धंधा पानी कर रहा है, घर गृहस्थी चल रहा है, तो उसके मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी तो है ही नहीं उसके, उसका उदय भी नहीं है और वो कर भी नहीं रहा, तो उसकी क्या है, उतनी शुद्ध परिणति चल रही है उसकी, उतनी वितरागता है कि नहीं है। अभी मुनिराज या कोई भी जो ज्ञानी है उपदेश दे रहा है, तो उपदेश दे रहा है ये तो राग का कार्य चल रहा है, प्रवृत्ति तो राग रूप है और उस समय राग भी है और प्रवृत्ति भी हो रही है, परंतु उस समय उनकी वितरागता चली नहीं गई है ना, वहां पर वितरागता तो विद्यमान है उनकी, तो जहां जितनी वितरागता प्राप्त हुई है वो तो चलेगी, भले शुभोपयोग में हो या शुद्धोपयोग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शुद्धोपयोग में आनंद की अनुभूति चल रही है और शुभोपयोग में भी उतनी निराकुलता तो बनी है उनकी, परंतु वहां राग का कार्य भी उन्हें उपयोग हो राग के उसमें चल रहा है उनका।
देखो चौथे गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक चारित्र गुण की दो धाराएं चलती है, एक सराग धारा यानी राग सहित धारा यानी राग भी चल रहा है और साथ में वीतराग धारा यानी वीतरागता भी चल रही है। जैसे अभी आपने बताया कि मुनिराज तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता वर्तती है तो वो सातवें गुणस्थान में है, अभी छठे में आए, छठे में आए तो उनकी राग धारा का विशेष प्राबल्य है, यानी वो बिल्कुल कपड़ा वपड़ा पहन लिया फिर ऐसा नहीं करेंगे, अभी वहाँ उनका जो शुभ राग चल रहा है जैसे आपने बताया उपदेश दे रहे हैं शास्त्र लिख रहे हैं उस समय वितराग परिणति भी चालू है, वितरागता तो इन कंटिन्यूएशन में है। कैसे चौथे से लेके अभी आपने एक बात बताई, मैं और थोड़ी डिटेल बताता हूँ। चौथे गुणस्थान वाला जीव है वो शुभोपयोग में होवे या अशुभोपयोग में होवे फिर भी उसकी वितराग परिणति चालू है, मुनिराजों को अशुभ उपयोग होता ही नहीं है, शुभोपयोग या शुद्धोपयोग, क्योंकि वो खाना तो बनाते नहीं और उद्दिष्ट आहार भी लेते नहीं, यानी उनके लिए बनाया हुआ आहार लेना ये उनके लिए योग्य नहीं है, यानी जो आहार बनाते समय अपने से जो कुछ हिंसा होती है उसकी कृतकार्य अनुमोदना उनकी नहीं है, इसलिए वो महा अहिंसा के धारी है।
हाँ देखो अभी हम फुटनोट देख रहे थे और शुद्ध परिणति की बात हो रही थी, शुद्धोपयोग देखो एक बार वो वितराग परिणति जो तीन कषाय मुनियों की अपेक्षा तीन कषाय के अभाव रूप वितराग परिणति कहते हैं, अब एक कषाय भी उनके विद्यमान है उसका उदय भी है, तो ये शुभोपयोग हो या शुद्धोपयोग हो पोजीशन वही है ना, तीन कषाय तो है ही नहीं उनके, शुद्धोपयोग में अंतरंग स्थिरता के काल में आनंद की विशेष अनुभूति है, प्रचुर स्व संवेदन चल रहा है, और बाकी जो शुभोपयोग में है उतनी तो निराकुलता उतनी तो चल ही रही है, हाँ शांति तो उतनी विद्यमान है, परंतु वहां तो राग में उनका लक्ष्य कहाँ पर भी है, राग में और प्रवृत्ति में, उसमें वो सावधान होकर चल रहे हैं, पर उस समय भी उसके आत्मा की अनुभूति तो विद्यमान है यही कह रहे, शुद्ध परिणतिनी साथे वर्त तो जे हठव अगर नो, ये महत्व की बात है क्योंकि उनकी जो देह की क्रिया भी वो सहज है और राग भाव भी सहज है, सोच सोच कर जबरदस्ती लाना नहीं पड़ेगा, मिथ्या दृष्टि कोई क्रिया करता है सोच समझ कर और हट से मैं कर दिखाऊंगा, यानी उसमें उसकी करने धरने की कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है कि हमने नक्की किया है कि अभी हम उपवास करेंगे या हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, या जो उसमें यह मुनि योग्य उसने बाह्य आचरण धारण किए मिथ्या दृष्टि है तो उसमें उसकी कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है उसके पीछे। देखो क्या कहते हैं, हठ वगरनो देह चेष्टादि संबंधी शुभोपयोग ते व्यवहार प्रयत्न छे, शुद्ध परिणति न हो, देखो जिसको शुद्ध परिणति नहीं जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है त्या शुभोपयोग हट सहित होई छे, यानी उसका कर्तृत्व पड़ा पड़ा है उसमें, हट सहित है नहीं कर्तृत्व पड़ा है, ते शुभोपयोग तो व्यवहार प्रयत्न पन कहवातो नहीं, यानी उसको व्यवहार नाम भी नहीं देते, प्रयत्न इसलिए वो प्रवृत्ति जो कर रहे हैं वो सावधानी पूर्वक किस तरह से चल रहे, परंतु उनके अंतरंग में उतनी वितरागता विद्यमान है। फिर ऊपर का वाक्य पढ़ेंगे, ત્યાં કહેલા ભેદોને જાણીને તેમની રક્ષારૂપ પરિણતિ તે જ અહિંસા છે. એ તીન લાઈન પડી હતી. હા, તેમનું મરણ થાવ કે ન થાવ, એને જબ સાવધાનીપૂર્વક વર્ત રહે હે તો જીવ કા મરણ હો યા ન હો, પ્રયત્નરૂપ પરિણામ વિના યદિ વો પ્રયત્નરૂપ નહીં હૈ તો સાવધ્ય પરિહાર દોષનો ત્યાગ થતો નથી. સાવધ્ય પરિહાર, સાવધ્ય ની હિંસા ઓર ઉસકા પરિહાર યાની ઉસકા ત્યાગ કરના. સાવધ્ય તો યે સાવધ્ય પરિહાર હોગા નહીં ઉનકા, યાની હિંસા ટલેગી નહીં ઉનકી, હિંસા હોગી ફિર સે યદિ પ્રયત્નપૂર્વક નહીં દેખ ચલ રહે, પ્રયત્નપૂર્વક કાર્ય નહીં કર રહે ઓર વહાં કિસી જીવ કી હિંસા નહીં ભી હો તો ભી હિંસા કા દોષ લગતા હૈ. મુનિરાજ અભી મુનિરાજો કે ક્યા હૈ, ઈર્યા સમિતિ પૂર્વક ચલતે, દેખ કર ચાર ચાર હાથ જમીન દેખ કર ચલ રહે, ઉનકા મૌન સે ચલેંગે, ઇધર ઉધર ઇધર બજાર ક્યા ચલ રહે વો નહીં, સામને દેખ કે ચલેંગે, કોઈ પેર કે નીચે હિંસા મુનિ નહીં આવે તો ભી બોલેંગે નહીં. હા, મૌન સે હી ચલેંગે, ચલતે સમય મૌન હી રહેતે ઉનકે. તો કહેતે કે પેર રખને જાય ઓર કોઈ ઝટ સે એસા ઉડ કર આયે ઓર નીચે મર ભી જાય તો ભી ઉનકો વો હિંસા કા દોષ નહીં હૈ, પ્રયત્નપૂર્વક ચલ રહે. ઓર હમ બજાર મેં ઇધર ક્યા હૈ ઉધર ક્યા હૈ ઉધર ક્યા ચલ રહે, કોઈ મરા નહીં નીચે, ફિર ભી વો હિંસા કા દોષ હૈ યે કહે રહે, ક્યોંકિ પ્રયત્નપૂર્વક પરિણામ વિના દોષનો ત્યાગ થતો નથી. સાવધ્ય પરિહાર, પરિહાર અને ત્યાગ, સાવધ્ય અને હિંસા કા દોષ છે, ઉસકા ત્યાગ નહીં હોતા. આથી જ પ્રયત્ન પરાયણને હિંસા પરિણતિનો અભાવ હોવાથી અહિંસા વ્રત હોય છે. પ્રયત્ન પરાયણ ઉસમે પ્રયત્નપૂર્વક ચલને વાલે કે હમ કહેતે ઉસમે પરાયણ એને ઉસમે પ્રયત્નપૂર્વક ચલ રહા હૈ, ઉસકા હિંસા પરિણતિ નહીં હૈ, ઇસલિયે ઉનકે અહિંસા વ્રત પલ જા. યાને યે સમ હમારી જો ક્રિયાએ હૈ, શ્રાવક કી હોય મુનિ કી હો, અપની અપની યોગ્ય, તો હમ યે પ્રયત્નપૂર્વક કરતે, પાણી છાન કર ઉસકા યુટિલાઇઝ કરના, યા અમુક એક ચીજે ખાને કી મર્યાદા વાલી હૈ, યા ક્યા ખાના ક્યા નહીં ખાના, કેસે પકાના, કિસ તરે ઉસકો કરના, યે સારે જો શ્રાવક કે આચાર યા મુનિયો કે લિયે જો બતાયા હૈ વો કિસલિયે, યે પ્રયત્નપૂર્વક ચલને કે લિયે. ઉસમેં પરાયણ એક્સપર્ટ હોતે હૈ ના, હા, પરાયણ શબ્દ આતા હૈ ના, પ્રયત્નપૂર્વક, હા, પ્રયત્ન મેં જો એક્સપર્ટ હૈ કહો, યા ઉસમેં પ્રયત્નશીલ જો હૈ એસા કહીએ હમ ઉસકો, એવી રીતે આચાર્ય દક્ષ હૈ, એવી રીતે આચાર્યવર શ્રી સમંતભદ્ર સ્વામીએ બૃહદ સ્વયંભૂ સ્તોત્રમાં શ્રી નમિનાથ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા 119માં શ્લોક દ્વારા કહ્યું છે કે, પહેલે શ્લોક પઢેંગે ફિર શ્લોકાર્થ, દો નંબર ઉપર, તથા ચોક્તમ શ્રી સમંતભદ્ર સ્વામી ભી એકચ્યુઅલી ચાહીએ વો ઉસકા વિસર્ગ આગે ચલા ગયા.
અહિંસા ભૂતાનાં જગતિ વિદિતં બ્રહ્મ પરમં ન સા તત્રારંભોસ્ત્યણુરપિ ચ યત્રાશ્રમ વિદ્યો તતસ્તત્સિદ્ધ્યર્થં પરમ કરુણો ગ્રંથમુભયં ભવાનેવાત્યાક્ષીન્ ન ચ વિકૃતવેષોપધિરતઃ. ઉપર વિદ્યો કૈસા હોગા, કુછ અલગ હૈ, યથાશ્રમ વિધો હોગા, વિદ્યો કા અર્થ ક્યા હૈ દેખતી હું યહાં ક્યા હૈ. અહિંસા ભૂતાનામ જગતિ વિદિતમ બ્રહ્મ પરમમ, આપ જરા દેખના, ન સા તત્રારંભોસ્ત્યણુરપિ ચ યત્રાશ્રમ વિધૌ, હા, વિધૌ યાની વિધિ, વિધિ કા વિધૌ, હા, હા, विधौ, ध करके विधौ, विद्यो लिखा है ना वो विधौ, ततस्तत्सिद्ध्यर्थम, ततस्तत्सिद्ध्यर्थम, ध्य हाँ धैर्य ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम ध धैर्य साथ चाहिए। परम करुणो ग्रंथम उभयम् भवान एवात्याक्षिन नच विकृत वेशोप धीरतः। आगे बराबर है हाँ। अभी हमने श्लोक पढ़ा है, इसका अर्थ तीन नंबर के पृष्ठ पर दिया है, श्लोकार्थ जहाँ लिखा है ना उसमें देखेंगे। जगति विदितम लिखा है ना, जगत मा विदित छे के, विदित छे ने प्रसिद्ध है, पता है सब के जीवोनी अहिंसा परम ब्रह्म छे, अहिंसा को परम धर्म भी कहते हैं। जे आश्रम नी विधि मा लेश पण आरंभ छे त्या, ते आश्रम अर्थात सग्रंथपणा मा ते अहिंसा होती नथी। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना, गृहस्थपना। तो जे आश्रम नी विधि मा लेश पण आरंभ छे त्या ते अहिंसा होती नथी, समझ में ना, क्योंकि वहां आरंभ है वहां अहिंसा नहीं है। माटे तेनी सिद्धि ने अर्थे, यानी अहिंसा की सिद्धि के लिए, हे नमिनाथ प्रभु परम करुणावंत एवा आप श्रीए बन्ने ग्रंथ ने छोड़या, ग्रंथ है ने परिग्रह संग भी कहते, द्रव्य तेमज भाव बन्ने प्रकारना परिग्रह ने तजी निर्ग्रंथपणु अंगीकृत करियो। विकृत वेश तथा परिग्रह मा रत न थया नच विकृत वेशो पधीरित रता। हाँ क्या क्या पूछा उसमें, करेक्शन कर लो ना। हाँ करेक्शन कर लो। हाँ ये पुस्तक किसकी है ब्रह्मा? हाँ लिख सकते हैं आप, कोई करेक्शन लिखो और कोई ऐसे अर्थ लिखना है तो लिख लो, पेंसिल से लिखो बस इतना ही। गुजराती में मत लिखना। शोभा कुछ कह रहे क्या आप? वो श्लोक हमने पढ़ा था दो नंबर के पेज पर, उसकी दूसरी पंक्ति के लास्ट में यत्राश्रम विद्यो लिखा है, वो विधौ चाहिए, और तीसरी लाइन में ततस्तत् सिद्ध्यर्थम ध और य जोड़कर चाहिए, ध्य या उसको ध को तो खोड़ो ने आधा करो, पाय मोड़ो, पाय मोड़ो मराठीत पाय मोड़का मराठी में कहते पाय मोड़का। हलंत हलंत। हाँ अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्रवचन पढ़ेंगे तीन नंबर के पृष्ठ पर। समय दर्शन ज्ञान अने चारित्रनी केटलीक परिणति शुद्ध होय छे एने आवो अहिंसा व्रतनो जे पांच महाव्रतनो विकल्प, विकल्प है ने राग है नहीं, ये शुभ उपयोग रूप प्रयत्न होय छे। परंतु प्रयत्न कहने पर वो जो जबरदस्ती वाला प्रयत्न उसका ऐसा अर्थ नहीं लेना, सहज रूप लेना इसको, वो तो है उसकी परिणति है, और ऐसे जीवों का जो राग है उसकी बात चल रही है। एने अहिया अहिंसा व्रत कहवामां आवे छे, व्यवहार अहिंसा व्रत, सारे निश्चय व्रत तो अंतरंग में स्थिरता रूप ही बताएंगे, व्यवहार से जिसको कहने में आता है उसकी बात चल रही है, क्योंकि हमारा अधिकार ही व्यवहार चारित्र संबंधी है। तेथी नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल मिथ्या तो पड़ा है, शरीर की क्रिया में एकत्व बुद्धि है, उसका कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है उसके, तभी तो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि कह रहे उसको। तेथी तो ये राग छे सहज, यानी अभी यूज टू करेली इसलिए सहज, वो वाला सहज नहीं लेना, वो तो है, तो उसका तो कर्ता बुद्धि पड़ी है, क्योंकि जो हम रोज करते हैं वो सहज होता है, वैसा सहज नहीं लेना है। यानी हमको आदत पड़ गई ना, उठते ही क्या करेंगे, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, वो तो हमारे रूटीन है। वो वाली सहजता नहीं बता रहे यहाँ पर, उसमें वो कर्ता बुद्धि वाली बात है। और यह जो ज्ञानी जो है, यहाँ तो मुनि की बात चल रही है, उनके जो ये आचरण भी है, उनका जो राग है, वो भी सब सहज है, जबरदस्ती वाला नहीं है। पण व्यवहार इन्हें अहिंसा कहना आवे छे, उसके पहले क्या लिखा, ये राग छे हिंसा छे। ये कभी सुना है आपने, किसको हिंसा कहा? दक्षाबेन, शुभ राग को हिंसा कहा। कौन सा शुभ राग? जीवों को बचाने का जो राग है, उसको क्या कहा? हिंसा कहा। क्यों? आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और आत्मा में ही गुप्त हो जाना, स्थिर हो जाना, उसी में रममाण हो जाना, वही सच्ची अहिंसा है। तो दूसरों को बचाने का परिणाम ये क्या है? राग है, और ये राग है वो हिंसा है।
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो आपका उपयोग कहाँ लगा है? पर में लगा है, बाहर में लगा है, यानी अपने स्वयं की हिंसा वारंवार कर रहे हैं। क्षण क्षण भाव हिंसा करता है, वो हिंसा है।
इसलिए यहाँ कहा राग छे हिंसा छे, पण व्यवहार इन्हें अहिंसा कहवा मावे। ख्याल में है ना बात? जिसको हम अहिंसा महाव्रत वगैरह जो महाव्रतों के नाम दे रहे हैं, और वो हम बाहर की प्रवृत्ति को वो व्रत बता रहे हैं, वो तो व्यवहार से उसको कहेंगे। सच्ची अहिंसा वो अगर सब अंतरंग में स्थिरता रूप है, वही सच्ची अहिंसा है। अहिंसा जब परमो धर्म कहे, परमो धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म क्या है, तो अंतरंग में स्थिरता वितरागता यही धर्म है। और वो दूसरों को बचाने का परिणाम तो राग है, फिर भी उसको अहिंसा कहने में आता है। कहने में आना है ना, वो व्यवहार कथन मात्र है। सच्ची अहिंसा क्या है? अपने में लीन हो जाना, स्थिर हो जाना। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है वो अपन पुरुषा सिद्धि उपाय में, ये बताया
44 नंबर
वो पुरुषा सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है,
44 नंबर की गाथा है,
उसमें ये बात बताई।
अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं? देखो मैं मेरी भाषा में समझाता हूँ। हम क्या करते हैं? एकेंद्री जीव को बचाने की कोशिश करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल पानी छोड़ के नहीं रखने का, या पंखा नहीं लगाने का, ऐसी जो बात है जिससे वायु का एक जीव या जल का एक जीवों की हिंसा न होए, उसकी हम कोशिश करते हैं और उसके लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। लेकिन वहां पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हम कर रहे हैं, अपनी स्वयं की, वो ख्याल में नहीं आती है। इसलिए रागादि की उत्पत्ति वही हिंसा कहा।
परंतु ये यहाँ व्यवहार की बात है ना, व्यवहार से इसको अहिंसा कहने में आती है। क्यों व्यवहार नाम दिया? क्योंकि निश्चय से वहाँ अहिंसा है जिस जीव के, उसके राग के काल में उसको यहाँ अहिंसा, क्योंकि उसके राग भी इस जाति का है कि दूसरों के बचाने के परिणाम सहज होते हैं उसके। निश्चय में है ना, अंतरंग में स्थिरता रूप है उनके, वितरागता है ना, तीन कषाय का अभाव रूप वितरागता है, बारंबार शुद्ध उपयोग शुभ उपयोग चल रहा है, तो उनकी तो अहिंसा तो है ही है। परंतु अभी जब अंतरंग में स्थिरता नहीं है, तो राग के काल में उनको ये बचाने के परिणाम आते हैं, तो उसको भी अहिंसा कह देते हैं। यहाँ क्या लिखा? ए राग छे हिंसा छे, पण व्यवहार इन्हें अहिंसा कहवामां आवे छे। व्यवहार नाम क्यों? क्योंकि सच्ची अहिंसा अंदर है, इसलिए इसको व्यवहार नाम देते हैं। वो समझना, वो तो सब कैसा है हट से कहो, या क्योंकि हमने आदत डाली अपने को इस तरह से, यानी वो छोड़ देने की बात नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं अहिंसा पाल रहे, वो क्या है? तो वो तो सदाचार है। सदाचार क्यों? इतने भी अगर मुद्द परिणाम नहीं हो गए, तो जिनवाणी का रहस्य भी नहीं समझ पाएंगे, और अपने अनुभव की बात तो बहुत दूर रहेगी। जिसके इतने भी परिणाम कोमल नहीं है कि मिथ्या दृष्टि है, परंतु मेरे कारण अन्य जीव उनकी हिंसा न हो, ऐसे तो परिणाम सहज हो गए, क्योंकि वो अपने को जीव मान रहे, तो बाकी भी जीव है ना, उनको भी वहां पर भी दुख के परिणाम उनके भी होते हैं, तो इसलिए ऐसे कोमल परिणाम हो गए तो ही, क्योंकि जैसे पत्थर पर बीज नहीं बोया जाता, ऐसे ही जिसके कठोर परिणाम हो गए उसको जिनवाणी रूप जो अमृत कहो या उसके जो बीज है वो वहाँ अंकुरित नहीं होगे, यही कह रहे हैं यहाँ पर। अभी ये गाथा फिर बताई है, नीचे टीका पढ़ते हैं, टीका का प्रवचन। आ अहिंसा व्रतना स्वरूपनु कथन छे, कुलभेद जीवोना कुलभेद, पहला 42 गाथा में आ गया छे, योनि भेद उत्पत्ति स्थानना भेदो अने जीव स्थानना भेद 14 अने मार्गना स्थानना भेद पहला ज प्रतिपादित करवामां आव्या छे। मार्गना स्थान कौन बताना चाहते हैं? हाँ आप मनीषा बेन, अरे वाह, हाँ बोलो बोलो बोलो। काय ज्ञान भव्य सम्यक्त्व सम्य आहार। देखो गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा भव्य सम्यक्त्व, संगी और आहार, ये 14 मार्गणा है ना। हमारे तो सुबह तो रोज मार्गणा से ही हाँ, क्योंकि एक एक कोई भी बात है, कोई भी विषय, वो प्रत्येक मार्गणा में घटित करते हैं। देखो क्या कहते हैं, एक जीव मां नथी एम एमा आयु हतु। पहला क्या बताए कि ये तो ये जो बातें हैं वो जीव में नहीं है, आत्मा में नहीं है, पर्याय में है, संयोग में है, परंतु आत्मा में नहीं है, क्योंकि वहां तो अभी बात अपनी चल रही थी। कुलभेद योनिभेद जीव स्थानना भेद अनि मार्गना स्थानना भेद, पहला ये कहूं तो कि जीव में ये नहीं, ये अहीं पर्याय में ये भेद छे एम जनावे छे। क्या कहा, पर्याय में है और वहां जीव कहां कौन से पाए जाते हैं वो जानकर उनकी हिंसा से हम दूर हो जाए। अहीं पुनरुक्ति दोष ना भय थी प्रतिपादित कर्या नथी, अहीं पाठ मां होवा छता विस्तार कर्यो नथी। क्या विस्तार थी गयो माटे, एक बार विस्तार किया है इसलिए उन्होंने बताया था सब वहां पर। कुलजोनी जीव मगन ठाणा, ये शब्द त्या 42वीं गाथा में हतो, 42 गाथा छे ने त्या ये शब्द छे। कुलजोनी जीव मगन ठाणा त्या ये शब्द हतो, त्या विस्तार कर्यो हतो, अहीं नथी कर्यो। त्या कहला तेमना भेदों ने जाणीने, जो जाणीने एम कहे छे, एने जाणवू तो जोईए। क्या कहा, वस्तु मां नथी पण पर्याय मां छे, एने जाणवू जोईए एम कहे छे। व्यवहार जानेलो प्रयोजन छे एम कहे छे ने, एने वो ज्ञान का गेय है और उसको जानना चाहिए, क्योंकि उस संबंधी कन्फ्यूजन है, संशय है, मिथ्या भ्रमणा है और आत्मा का अनुभव हो जाए तो कहते नहीं होगा। इसलिए बेसिक स्थूल रूप से तो इस संबंधी कुछ ज्ञान आवश्यक है। समय सार में भी 50 से 55 गाथाओं में ये जो निषेध किया ना, हाँ, ये वर्ण नहीं गंध नहीं वो तो कह ही दिया, फिर वो जीवस्थान नहीं, बंधस्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, मार्गना स्थान नहीं, वर्ग वर्गना स्पर्धक नहीं, कितनी बातें बताई वहां सब सबका निषेध, संयम स्थान नहीं है, ऐसा ऐसा, पर वो क्या है वो मालूम नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, क्यों, वो पर्याय और संयोग की बातें जीव में नहीं है, इसलिए वहां आत्मा शुद्धात्मा की बात है उसमें वो नहीं है, पर बाकी पर्याय में है ना, तो है तो वो जानने का विज्ञान का विषय है, ये कह रहे। यहाँ पर भी यही बात बताई, वस्तु मान थी, वस्तु का अर्थ क्या है, शुद्धात्मा में नहीं है पर पर्याय में है। मुक्ष ने कुछ कहा है, उसको कहते जानवाणी बात नहीं पर छेम जानवाणी बात नहीं, आश्रयानो लीधो छता पर्याय में आवो भेदो छे ए जानवा। आश्रय आनो लीधो ने आश्रय तो ध्रुव का लिया है, परंतु पर्याय में ये भेद है ऐसे जानना चाहिए। मुमुक्षु पन हे ये कह्या पछी एने आम जाऊ के आम जाऊ, तो हे ये कह दिया तो क्यों उसके पीछे लगना, तो हमने उसको जानने के हे कहा। देखो हेय जो शब्द है वो श्रद्धान की अपेक्षा होता है, जानने के लिए पूरा विश्व गेय है, जानने के लिए कोई हेय नहीं कहा। हेय गेय उपाधेय श्रद्धा के भेद है, श्रद्धा की अपेक्षा उसमें ये है ये गेय उपादेयपना होता है। ज्ञान की अपेक्षा तो सातों तत्व गेय रूप में चले जाएंगे, ज्ञान के गेय ना, क्योंकि हमने सातों तत्वों को जान तो लिया है। जाने लो प्रयोजन का अर्थ क्या है, जाने लो प्रयोजनवान छे, यानी वो ज्ञान के गेय है यथार्थ, तो उसको जानकर फिर श्रद्धा जब करना है तो श्रद्धा किसी से उसको मान्यता करनी है कि ये छोड़ने लायक है, पर्याय में है, जीव उसको जान भी रहा है, क्योंकि उसको अपने पर्याय में राग है उसका ज्ञान नहीं होगा। मुनिराज है, उनके जो जीवों के रक्षा के परिणाम है उनको राग विद्यमान है, तो उसका राग उनका ज्ञान होगा कि नहीं होगा, अपने से भिन्न तरीके उसको जान रहे हैं, पर अगर उसको जानने में ही है ये कह दो तो वो जानेंगे नहीं, तो उसको करेंगे क्या। श्रद्धान में उसको है ये कहना है, जानने के लिए नहीं। क्या कहा, हे ये कह पीछे ने आम जाऊं कि आम जाऊं, पर व्यवहार ये जानू एम आवे छे कि नहीं, ये इसे मुमुक्षु ने जो प्रश्न पूछा ना, तो हे ये तो कह दिया, तो उसके जानने की भी क्या जरूरत है, तो जानने के लिए हे नहीं कहा था, पर व्यवहार ये जानू एम आवे छे कि नहीं, हे ये ने जाने त्यारे हे ये थाय के जाने बिना ही ये शी रीते थाय, ख्याल में आई ना बात। और हे ये तो श्रद्धान में उसको हे ये मानना है, ज्ञान का तो ये है। और फिर जानकर जब हम उसका आश्रय नहीं लेना, यानी उसको जानते नहीं रहना है, जानकर आश्रय तो स्व का ने ध्रुव का लेना है, हे ये था ये जाने बिना ये अशी रीते थाय, हे ये गेय आ पर्याय मा हे ये छेम जाने बिना तेनु लक्ष्य केम छोड़े। पहले में उसको है ये जानेगा, फिर श्रद्धान में उसको है ये तरीके समझेगा, फिर उसका लक्ष्य छोड़कर ध्रुव का लक्ष्य करेगा।
पर्याय में जो शब्द लिखा है ना, पर्याय में माने कौन सी पर्याय, माने एग्जैक्टली क्या कहना, जैसे काय है तो काय में क्या पर्याय,
क्या क्या क्या
हाँ,
तो काय के भेद बताओ, काय के भेद बताओ, वो इंद्रिय षटकर हाँ, तो अभी ऐसे भेद है कि नहीं है, संसारी जीवों के स्थावर और तरस भेद है कि नहीं है, भेद तो उसके पर्याय में त्रसपना स्थावरपना चल रहा है कि नहीं चल रहा।
जैसे आपने वहाँ जो डिटेलिंग किया ना, तो 29 जो उन्होंने बताया वर्णादि और रागादि, उसमें रागादि जीव के लिए है और जो वर्णादि के साथ
वो तो परद्रव्य में पर पदार्थ है, वो यहाँ पर्याय में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ का विषय अलग है ना, वहाँ बात अलग थी और यहाँ बात अलग है, परंतु वहाँ स्टाइल तो यही थी ना, वहां तो संयोगों की भी बात होती है। रागादि शरीर में वो वर्णादि को अपनत्व मान रहा है जीव, वहां उसकी बात थी, अब यहाँ क्या कहे, आ पर्याय मा हे ये छेम जाण्या बिना तेनु लक्ष्य केम छोड़े, एम कहे छे। तेमने जानी ने, देखो जानी ने, क्योंकि पर्याय में है ना, तो है तो ज्ञान का विषय भी है वो, परंतु ज्ञान ने तो जाना कि राग है, परंतु किस रूप से अभी उसको समझना है, तो है यह है, तो है यह है, तो उसको जान ज्ञान का गेय था भी उसको लक्ष्य छोड़ दिया और लक्ष्य अपने स्वभाव का किया, स्वभाव में स्थित हो गया, तो राग जो था वो तो अबुद्धिपूर्वक में चला गया, फिर वो नए पर्याय में तो कम होकर उदय में यानी घटते चला जाएगा इस तरह से। तेमने जानी ने जो आयु छे ने बधा में आयु छे, योगसार में आयु नथी, छ द्रव्य ने प्रयत्न थी जानवा, छ द्रव्य तो पर छे, पण व्यवहारे पोतानी पर्याय मा एनु ज्ञान थाय छे, एथी एने जानवा। जानवा मा क्या वांदो छे, क्या क्या बात है, ये जानने का ही निषेध कर देते, जानने से बंद नहीं हो रहा है, वो ज्ञान राग एकमेक होकर वो राग में अपनत्व मानकर बैठा है, और फिर राग से भी बंद है, और वो राग में अपनत्व मिथ्या तो उससे भी बंद है, जानने मात्र से बंद नहीं, केवल ज्ञानी तो सबको जान रहे, जानने से बंद होता तो उनको भी होना चाहिए था, ख्याल में, तो जानवा मा क्या वांदो छे, व्यवहार जाने लो, व्यवहार जानवामां आवे, व्यवहारनो विषय छे के नहीं, व्यवहार जानवामां आवे ने पर्याय में, पर्याय जो है, पर्याय में जो राग है वो जानने में तो आएगा कि नहीं आएगा? हम किस भूमिका में खड़े हैं वो कैसा पता चलेगा? राग तो जानने में आएगा। मुमुक्षु, ए तो धर्म थया पछीनी वात छे, धर्मनी आ वात छे ने, आ धर्म थया पहलानी वात छे। तो कहते पहलानी या वात ज नथी, क्योंकि पहले व्यवहार कहाँ होता है? ख्याल में आई ना, वो धर्म प्रकरण समय दर्शन के पहले की, मुमुक्षु कहते पहले की बात है, क्योंकि ऐसी मान्यता है लोगों की, व्यवहार करते करते निश्चय होगा, और ऐसी मान्यता प्रचलित है बहुत अधिक से। तो कहते वो पहले, यहाँ क्या कहा, पहला नहीं या वात ज नहीं, उसको व्यवहार नाम ही नहीं देते। अहीं तो आत्मानु आवु भान छे त्या आवी पर्याय ने भेद ने जानवा। आत्मानुभान का अर्थ है वहां, वो तो आत्मा का अनुभव है, वितरकता है, वहां वो पर्याय और उसके जो भेद है उसको जानना चाहिए, वो ज्ञान का ज्ञेय है। धर्म थया पहला नी बात अही छेज नहीं, कितनी स्पष्ट रूप बता दिया। ए इन्हें पर्याय जानवा मा आवे कि नहीं? पर्याय जानवा मा न आवे, द्रव्य ने पर्याय बेनु ज्ञान करे, नहीं तो प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाएगा, पर्याय का ज्ञान तो रहेगा। आदरणीय द्रव्य पर्याय जानवा लायक, क्या कहा, द्रव्य पर्याय दोनों ज्ञान के विषय है, उसमें से आदरणीय द्रव्य है और जानवा लायक पर्याय है। हमने देखा ना, सभी तत्व ज्ञान के ज्ञेय है, और श्रद्धान की अपेक्षा उसको किस रूप से अंगीकार करना है, तो यहाँ तो द्रव्य है वो आदरणीय है, यानी उसके सन्मुख होकर जीव तत्व जो है आश्रय करना कहो, उसके सन्मुख होकर उसी में स्थिर होना कहो, बात एक ही है, और बाकी सब हम पर्याय वाले तत्व को जाना उसको जानने के ज्ञेय है, परंतु वो जानने पुरते है, बस ज्ञान के ज्ञेय है, और हम जानेंगे नहीं कहेंगे वो तो मिथ्या भ्रमणा चलेगी, उसको तो सम्यक्त्व होने का चांस भी नहीं है। ए अटपटू छे एटले बधी आ बधी भांगजड़ उभी थई छे ने, हमना ये तो कहसे तेमना भेदोनी, भेदोने चाहिए जानीने, भेदोने चाहिए थी ना, भेदोने जानीने, भेदोने करो, तेमना भेदोने जानीने, जानवामां न आवे, मार्गणाना भेदो पर्यायमां छे। अभी हमने जो 14 मार्गणा गिनाई ना, तो पर्याय में वो भेद है, क्योंकि वो तो कहते कि सबको जानना चाहिए। अष्टपाउंड में तो कुनकुंदाचार्य भगवान ने ये कहे कि भगवान अरिहंत, अरिहंत भगवान को हमने नमस्कार करते, हम तो वहां स्थापना अरिहंत कहते हैं, तो स्थापना हमने की तो हमने क्या किया, पंच कल्याणक मनाया धूमधाम से, करोड़ों रुपया खर्चा किया, और वो संगमरमर की जो मूर्ति बनाई थी पाषाण की, उसमें विधि पूर्वक स्थापना की, तो कहते वो स्थापना नहीं कहलाती। तो स्थापना किसे कहना, तो अरिहंत भगवान को जीवस्थान, मार्गनासान, पर्याप्ति, प्राण, ये सब इस सभी पद्धति से ये उन पर घटित करके जानना, यानी उनके सब ये मार्गनास्थान, क्यों, अरिहंत भगवान जो है गुणस्थान कौन सा है, 13-14 गुणस्थान, जीव समास कौन सा है, संगी पंचेंद्रिय, हाँ जीव समास, पर्याप्ति कितनी है, 6 है, क्योंकि संगी पर्याप्त है ना, प्राण कितने हैं, 10 नहीं है, 4 प्राण है, ये सब जानना चाहिए कहते। तो वो क्या है मालूम नहीं है, पर्याप्ति क्या है, प्राण क्या है, उनको संज्ञा है कि नहीं है, बोलो कौन सी संज्ञा, कौन सी है, आहार भय मैथुन परिग्रह, क्या है उनको, कुछ नहीं है, 10वें तक वो सूक्ष्म लोप था परिग्रह नाम, अभी कुछ नहीं है उनके, समझ में है ना, कौन से काय वाले, काय काय समझ में है ना, त्रस काय है कि नहीं, वो सारे ही मार्गना गति इंद्रिय काय सब, मनुष्य गति वाले, पांच इंद्रिय वाले, सब लगाना है। सभी मार्गणाओं के द्वारा वो निश्चित करना है उनका स्वरूप हमको, तब हम कहेंगे हमने अरिहंत की स्थापना की, तब उनको नमस्कार करना वो हमारा सही नमस्कार होगा, तब तक नहीं। अरिहंत को भी नक्की करो, अपना भी नक्की करो कह रहे हैं, इसलिए उसको जानना कि नहीं जानना ये नक्की करना है। लोगों को क्या लगता है, ये विकल्प होते हैं, दुनियादारी के विकल्प विकल्प नहीं लगते हैं, और ये करना नहीं होके वो विकल्प लगते हैं, यानी ये हमारी रुचि बताते हैं कहाँ पड़ी है। बारंबार कह रहे इसको जानना चाहिए, जानने का निषेध नहीं है, हाँ उसको आदर वाला एक मानेंगे, उसी में रचे पचे केवल, बस यही लक्ष्य हमको उसको याद करना है, रटना है, बस उसके उसी में उलझे वो नहीं है। हमारा सन्मुखता किसकी करनी है, ध्रुव स्वभाव की। पर जब अभी उसकी सन्मुखता नहीं है कहो, या उसको विषय को हमने अभी समझ लिया, अभी हमको और रुचि है, बाकी दिन कहाँ बिताएंगे, ने एक घंटा तो स्वाध्याय किया अभी द्रव्यानियोग का। मन जो ऐसा है ना, उसको अनेक अवलंबन चाहिए, तो इसमें तो मन रमता है कर्णानियोग में, वो तो दुनिया क्या चल रही है याद नहीं आता, हम याद दिलाना पड़ता है, अभी टाइम हो गया, अभी बंद करो लेक्चर। तो इस तरह से और हमारा ज्ञान विकसित हो जाता है, सही बातें ख्याल में आती है, तो और अधिकता इन्हें वो तो भेद ज्ञान के लिए कार्यकारी होते हैं, बहुत दृढ़ता आती है। नहीं तो केवल ज्ञानी कहते हैं, और वो ज्ञान क्या होगा इसका अंदाजा तो कर्णानियोग पढ़कर आता है, तब तक वो केवल ज्ञान। अभी ये शुद्ध ज्ञानियों ने इतना लिखा है, और ये पंचम काल के जीवों ने पंचम काल के जीवों के लिए लिखा है, वो भी समझने में हमें पसीना छूट रहा है, तो केवल ज्ञान क्या होगा। और बारह अंगों की रचना जो हुई थी वो क्या हो गया, ऐसा थोड़ा सा अंदाजा तो आता है ना। अभी एक अंग का भी पूरा ज्ञान नहीं था, नहीं रहा था दर्शन आचार्य के पास, तो उनके द्वारा जो सिखाया गया उसकी रचना अभी हम पढ़ रहे हैं, षटखंडागम की बात करते हैं, परंतु वो भी समझने में कितना पसीना तो होता ही है। अभी दसवीं पुस्तक में समझ में आया ना क्या क्या हुआ था, अभी वो समाप्त तो होने को आए, अभी आसान विषय चल रहे हो। देखो ऊपर हम देखते तेमना भेदों ने जानी ने जानवा मा न आवे मार्गणा ना भेदो पर्याय मा छे। देखो जो छे तो उसको सही जानना चाहिए, कई कई अवस्था मा जीव छे, क्या जीवना स्वरूप भेद मा भेद क्या छे, कुल कयू छे योनि शू ए जानवा मा न आवे, जानवा मा तो बधु आवे। यानी कौन कौन से जीव कौन कौन सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे अभी कोई सिद्ध है तो कोई संसारी है, तो संसारी जीव जीव तो दिखाई नहीं देता, अरूपी है, तो कौन सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये भेद क्यों जानना, क्योंकि सारे अरूपी है, सारे ज्ञान दर्शन में है, तो अरूपी कैसे दिखाई देंगे अब, तो कोई एक इंद्रिय जीव है, फिर उनके पर्याय बताएंगे, पृथ्वी का एक है, कोई जल का एक है, कोई वनस्पति का एक है, अभी जल का एक कोई जीव होते कोई मानेगा अन्य मति, ख्याल में आती है ना, तो ये भी जीव है, तो एक इंद्रिय द्विंद्रिय ये जीव है, वो काय की अपेक्षा बताएंगे, उनके ज्ञान की अपेक्षा बताएंगे, उनके कषाय की अपेक्षा बताएंगे, लेशा की अपेक्षा बताएंगे, इतने भेद कर करके उनके पर्यायों की बात करेंगे, तो ये जीवों के भेद पर्याय की अपेक्षा, संयोगों की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा बताए जाते हैं। इसको कहते हैं कई कई अवस्था में जीव छे, यानी उनके अवस्थाओं के भेद है ये, और जीवों के पहचान मार्गण है ना, अन्वेषण खोज, जीव तो अरूपी है, उनकी खोज कैसे करेंगे, तो अभी देह का संयोग है, उनके कर्मों के उदय भी है, और वैसे वैसे अलग अलग देह के संयोग में है, तो उसके द्वारा हम उनको पहचान सकते हैं, और पहचानना क्यों, क्यों उनकी हिंसा से हम बच सकते हैं, क्योंकि उनकी हिंसा न हो, विराधना न हो, इसका हम प्रयत्न कर सकते हैं। अगर मालूम ही नहीं कि वो जल का एक भी जल में भी जीव है और ये वायु में भी है, तो उनकी बचाने का परिणाम क्यों करेंगे जी, समझ में आएगा। आगे लिखा देखो तेमनी रक्षा रूप परिणति तेज अहिंसा छे, रक्षा रूप परिणति ये राग है ना, ये व्यवहार से यहाँ उसको अहिंसा कह रहे हैं, ये रक्षा शब्द राख्यो छे, તેમની રક્ષારૂપ પરિણતિ, એટલે કે એ બધા જીવોને ન મારવાના પરિણામ, જીસકો પાપ સે નિવૃત્તિ કહેતે ને, ન મારને કા પરિણામ, એ પરિણતિ, તે અહિંસા, વ્યવહાર, શુભોપયોગ, એની રક્ષા કરી શકાય? કે અમને અમને એવું તો એને સ્વચતુષ્ટે દેખાતા, તો કોઈ કિસકો માર નહીં શકતા, બચા નહીં શકતા, તો એટલે પૂછ રહે એની રક્ષા કરી શકાય? એ કીધું ને, રક્ષાનો અર્થ આ થઈ શકે છે ક્યાં? એને નહીં મારવાના પરિણામ, રક્ષા કા પરિણામ કરતે હૈ, નહીં મારને કા પરિણામ, વહી ઉસી કો રક્ષા કા પરિણામ કા, ઉપર દેખો, ન મારવાના પરિણામ કહેતી હૈ, ઉસકો રક્ષા કહા, એની અહીંયા રક્ષા કહેવામાં આવે છે. પરિણામ એને મારી શકે છે કે જીવાડી શકે છે, પ્રશ્ન અહીં છે જ નહીં. વો ક્યા કરી સકતા હૈ વો બાત નહીં હૈ, નહીં મારને કા પરિણામ ઉસકી બાત હૈ. યહાં પર એને નહીં મારવાના પરિણામ, જો કહે છે અહિંસા છે, વ્યવહાર હો આ શુભ ઉપયોગ, વ્યવહાર ક્યો? કે રાગ કો યે કહે રહે હૈ, ઇસલિયે ઇસકો વ્યવહાર કહા. ઓર વ્યવહાર તબ નામ હોગા જબ સાથ મેં નિશ્ચય હૈ તબ. તેમનું મરણ થાવ કે ન થાવ, લ્યો પ્રશ્ન છે, મરણ થાય કે ન થાય એની સાથે કાંઈ નથી, એ તો પર છે. પ્રયત્નરૂપ પરિણામ વિના, શુભભાવમાં પ્રયત્ન વિના સાવધ્યનો પરિહાર થતો નથી. સાવધ્ય કા પરિહાર, એને દોષ કા ત્યાગ હોતા નહીં હૈ. ક્યા કહા? શુભભાવમાં પ્રયત્ન વિના દોષનો ત્યાગ થતો નથી એમ કહે છે. સાવધ્ય ને દોષ, સાવધ્ય ને હિંસા, ઓર હિંસા કા પરિહાર એને હિંસા કા ત્યાગ, એને પ્રયત્ન કે શુભભાવ મેં પ્રયત્ન, સાવધાનીપૂર્વક નહીં હમ કાર્ય કરેંગે, ચલના હૈ જો કુછ હમારે રોજ કે લૌકિક વ્યવહાર કરના હૈ, તો ઉસમે અગર હમ સાવધાનીપૂર્વક પ્રયત્નપૂર્વક નહીં ઉસમે સચેત રહેતે હૈ, તો હિંસા કા દોષ લગતા હૈ. યહી કહે રહે. ક્યા કહા? શુભભાવમાં પ્રયત્ન વિના સાવધ્યનો પરિહાર ની હિંસા કા ટાલના હોતા નહીં હૈ. ખ્યાલ મેં એમ બા? क्योंकि हम चाहे जैसे कुछ भी करें कार्य, जैसे रस्ते में भी चलते हैं, तो चलते कैसे? पैर उठा के डालते हैं, खड़क खड़क के घस के नहीं चलते. ये तो सारी आदतें बचपन से हमारे घरों में बताई जाती है, कैसा चलना, कैसा बैठना, कैसा करना. खाना खाते समय दो हाथ से ऐसे रोटी तोड़ तोड़ के खाते हैं लोग, वही हाथ कपड़ों को लगाते हैं. यानी ये तो बचपन से ही आदतें डाली जाती है, क्योंकि वो जो ये जो इसको खरकट कहते हैं हम, जो कोई रोटी के अन्न के जो हाथ होते हैं कपड़ों में ऐसे लग जाएंगे, तो उसमें तो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है. देखो क्या कहते हैं, हाँ ये नीचे से तीसरी लाइन एम कहे छे, बीजा ने न मारवो ये शुभ भाव नो प्रयत्न छे, ए मरे न मरे इनी साथे संबंध नथी. એ તો સાથે નાખી દીધું, પણ શુભ પરિણામનો પ્રયત્ન છે, એ સાવધ્ય યોગનો ત્યાગ છે. સાવધ્ય યોગ એને હિંસા કા ઉસકા ત્યાગ હૈ. શુભ પરિણામ કા પ્રયત્ન હૈ, એ પ્રયત્નરૂપ પરિણામ વિના, શુભમાં પ્રયત્ન વિના અશુભના સાવધ્ય યોગનો ત્યાગ થતો નથી. એને દેખો, અભી રાત કી ભૂમિકા મેં શુભ મેં પ્રયત્નપૂર્વક ચલ રહે હૈ, ઉસકે બિના અશુભ કા જો હિંસા કા ત્યાગ નહીં હો સકતા. આથી જ પ્રયત્ન પરાયણને, જો શુભભાવમાં પ્રયત્ન પરાયણને હિંસા પરિણતિનો અભાવ હોવાથી, એને હિંસારૂપ ઉનકી પરિણતિ નહીં હૈ, ક્યોંકિ વો પ્રયત્નશીલ હૈ, પ્રયત્ન પરાયણ હૈ, એને સાવધ્યના અશુભ ભાવનો ત્યાગ હોવાથી અહિંસા વ્રત હોય છે. કહો સમજાણું કાંઈ? એને અહિંસા વ્રત શુભભાવ હોય છે, આ વ્યવહાર નિશ્ચય સહિત હોય છે, એને આવો વ્યવહાર હોય છે એમ જણાવે છે. અને વ્યવહાર નહીંના અર્થમાં તો એમ પણ કહે, એ વ્યવહારનો પ્રયત્ન છે એટલો અશુભ ટાળે છે ને. સાવધ્ય યોગનો ત્યાગ એટલો શુભમાં પ્રયત્ન છે, છે પુણ્ય બંધન. ક્યા કહા, એ અશુભ સે બચને કે લીએ શુભ મે પ્રયત્ન પૂર્વક, વહાં ઉનકા રાગ મે પ્રયત્ન હૈ, પરંતુ કહેતે વો હૈ તો બંધ કા કારણ. નિશ્ચય તો સ્વરૂપની હિંસા, ક્યા કહા, યે જીસકો અહિંસા કહે રહે હૈ વો નિશ્ચય સે દેખેંગે તો અપને સ્વરૂપ કી હિંસા હો રહી હૈ, ક્યોંકિ ઉસમે પ્રયત્ન રૂપ હૈ, શુભ રાગ મે પ્રયત્નશીલ હૈ, અશુભ સે બચ રહે હૈ, રક્ષા કા પરિણામ ને નહીં મારને કા પરિણામ, इस तरह से चल रहे कि कोई मरे नहीं, कोई मरे नहीं, ये अपना उसमें उपयोग में हम सावचेत है. तो कहते के निश्चय थी तो स्वरूप नहीं हुसा, पण व्यवहारे सावध्य योग नो त्याग छे माटे व्यवहारे ने अहिंसा परिणाम कहवामां आव्या. कितनी स्पष्ट बात लिखी है ना. मुमुक्षु कहते गुंचवन तो खरी, गुंचवन काहे की, हाँ ઉત્તર, ગુંચવન જરીય નથી, સીધો માર્ગ છે, પણ માળા એને ઊંધો માન્યો છે. ક્યાં કહેતે માળા ક્યાં હોતા ગાંડા, ના 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 એ તો મૂરખ માળા ને ગાંડા, માળા એને આદમી, અચ્છા આદમી મૂર્ખા ને માળા એ માળા ની
અભિપ્રાય
જાવાની કે જ્ઞાન તે સૂજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકનમ સદા દેત હોળો.